Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmanand Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
ऐसे जप करना है और जप करने से मेधा में जो प्रतिबंधक है वो दूर हो जाते हैं। तो देखिए उसका सामान्य अर्थ आपको बता देते हैं, अलग अलग करके। यह छंदसाम ऋषभ विश्वरूप, यह यानी जो, छंदसाम यानी छंदों में, ऋषभ यानी ऋषभ है, ओमकार के लिए है ये, कि जो छंदों में ऋषभ है और जो स्वरूप से विश्व रूप है। एक बात हुई, जो छंदों में ऋषभ है, जो माने ओमकार, छंदों में ऋषभ है। तो छंद शब्द से आप प्रसिद्ध अर्थ जैसा मानते हैं, छंद शास्त्र में पिंगल आदि के द्वारा जो रचित छंद शास्त्र, वो यहां पर नहीं है। छंद से अभिप्राय है वेद, छंद साम यानी वेदानाम, वेदों में। छंद साम यानी छंदों में, छंद कहते हैं वेद को। वेद जो है वो छंदों में निबद्ध है। समग्र वेद राशि सात छंदों में निबद्ध है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुभ और जगति, ये सात छंदों में समग्र वेद राशि निबद्ध है। इसलिए वेद के लिए छंद शब्द का प्रयोग किया कि जो छंदों में। और एक विशेषण छंद के लिए, अमृतात्, यह अमृतात् छंदोभ्यः, अमृतात् छंदोभ्यः अधिसंबभूव। एक तो ये ओमकार छंदों में ऋषभ है यानी श्रेष्ठ है, ऋषभ का अर्थ है श्रेष्ठ। दूसरी बात, अमृतात् छंदोभ्यः अधिसंबभूव, ये जो ओमकार है वो वेद से उत्पन्न हुआ है। और वेद का विशेषण अमृतात्, वेद अमृत है यानी नित्य है, जो नित्य वेद से उत्पन्न हुआ है। ये दो ओमकार के विशेषण हो गए और ये विशिष्टता है। एक तो ये छंदों में यानी वेदों में ऋषभ है, और ये जो ओमकार है वो अमृत यानी जो मनुष्य बुद्धि परिकल्पित नहीं है, जो ईश्वर से उत्पन्न होते हैं, ऐसे नित्य वेद से जो उत्पन्न हुआ है, ऐसा जो ये दो विशेषणों से युक्त जो ओंकार। फिर प्रार्थना है या एक और भी विशेषण जोड़ लीजिए, इंद्र, इसमें और भी इंद्र है, स मेंद्रो में इंद्र को पहले लगा लीजिए। फिर वाक्य बनाइए कि यह छंदसाम ऋषभ अमृतात छंदोभ्यः अधिसंबभुव इंद्र मे मेधया स्पृणोतु। ये वाक्य बना करके जप करना है, जैसे मैंने जो कहा उसके उस वाक्य के रूप में जप करना है, या ऐसे न करे तो जैसे इसमें है वैसे भी जप करना चाहिए। तो देखिए इसका सामान्य अर्थ भी बता देते हैं, है? बोल रहे अभी पूरा कर देंगे, अर्थ बताते हुए देखो। पहले तो यह छंदसाम ऋषभ है, जो छंदों में ऋषभ है। देखिए गाय 1000 गाय है, उस गाय के बीच में जो ऋषभ होता है उसको कैसे माना जाता है? सभी गायों में वो उत्तम माना जाता है ऋषभ। बेल के लिए भी ऋषभ शब्द का प्रयोग है। तो छंद तो बहुत है, जैसे अभी कहा वेद, छंद से लेना है वेद राशि। वेद राशि में ये ऋषभ है, यानी कि समग्र वेद में ओमकार का ही प्रतिपादन है, ये ओमकार की ऋषभता श्रेष्ठता। समग्र वेद में प्रतिपादन किसका है? ओमकार का। आप लोग ने कठोपनिषद में सुना होगा, सर्वे वेदा यत्पद मामनंती तपांसि सर्वाणि च यद्वदंती यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्यो मित्येत। ऐसा आचार्य यम ने नचिकेता के प्रति कहा। और गीता में भी भगवान ने कहा प्रणवः सर्ववेदेषु, सर्व वेद में जो प्रतिपाद्य प्रणव है वो मैं हूं। तो ये है प्रणव की श्रेष्ठता, इसलिए कहा कि जो ऋषभ है। फिर दूसरी बात अभी कही कि यह छंदसाम ऋषभ, और दूसरा विशेषण विश्वरूप कि जो प्रणव विश्वरूप है। ये जो विश्व है वो प्रणवात्मक है, ऐसे प्रणवात्मक है, उसके लिए मांडुक्य उपनिषद पढ़ना चाहिए। संक्षेप से बता देते हैं, समग्र संसार का जो व्यवहार है वो वांग्मूलक है। कैसा है? वांग्मूलक है, वाणी नहीं है तो कोई व्यवहार नहीं। और जो वाणी है वो समग्र वाणी है, वो अकार मूलक है। अकारो वही सर्वा वाक, अकार सभी वाणी का मूल है। देखो सबसे पहले यदि बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो अकार का उच्चारण करता है। जन्म लेते ही जो शब्द बोलता है ना बच्चा, वो अकार बोलता है, अकार से जीवन की शुरुआत है। फिर ऊ बोलता है, नहीं बोलता ऊ बोलता, और फिर मृत्यु के समय मकार का उच्चारण है, प्राण निकलते ही मकार का उच्चारण हो जाता है। बिल्कुल है। अकार उकार और मकार ही जीवन है, समग्र संसार ओमकार मूलक है। और अकार है वो पहले ही, जैसे कहा कि जितने भी अच वर्ण और हल वर्ण, वो तो जानते ही नहीं आप लोग, जितने भी अच वर्ण और हल वर्ण है उसकी उत्पत्ति अकार से हुई है। अकार का स्थान है कंठ, और सहस्रार चक्र से जो वायु का अभिव्यंजन होता है वो नाभि चक्र तक आता है। नाभि चक्र से वायु का अभिव्यंजन होकर के हृत चक्र तक आता है, हृत चक्र से वायु का अभिव्यंजन होकर के कंठ तक आता है, तब तक उसका स्वरूप अकार ही रहता है। फिर जब कंठ से आगे बढ़कर के तालवादि स्थान प्रयत्न के साथ जब इसका संपर्क होता है वायु का, तब जाकर के वो अकारादि हकारादि वर्ण का स्वरूप धारण कर लेता है। ऐ वो रिलरी ए ओ ऐ औ इत्यादि वर्ण का उच्चारण बाद में होता है, ऐ वर लयम गणन इत्यादि शब्दों का उच्चारण ये तालवादि स्थान प्रयत्न के निमित्त होता है। इसलिए अकार सब वाणी का मूल है और समग्र संसार वांग मूलक है, इसलिए अकार विश्वरूप हुआ कि नहीं, इस तरह से अकार विश्वरूप है। ऐसा जो अकार विश्वरूप है, स मेधया स्पृणोतु, ऐसा जो अकार है वो मेरे को मेधा से संपन्न करे। और भी विशेषण जैसे कहा, यह अमृतात छंदोभ्यासं बभूव, जो छंद से उत्पन्न हुआ है, और छंद कैसा है, अमृत। अमृतत्व क्या है, आनुपूर्वी से वो नित्य है इसलिए अमृत कहा, ये दूसरी बात हुई। और यह इंद्र, जो इंद्र है ओमकार के लिए विशेषण है, ये शांति पाठ में इंद्र स मेंद्रो, इसमें जो है ना स मेंद्रो जो शब्द है उसको आप अलग करेंगे तो मां और इंद्र ऐसे दो शब्द अलग होंगे। यानी यह इंद्र, जो इंद्र है स मां मेधया स्पृणो, इंद्र का अर्थ है ओमकार के लिए इंद्र शब्द का जो यहां पर प्रयोग हुआ वो ये है कि जैसे इंद्र है वो सब कामना को पूरी करता है, वैसे ओमकार भी सर्व कामेश, सर्व काम का वो स्वामी है, यानी सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है ये। जैसे जो प्रसिद्ध स्वर्गस्थ जो इंद्र है उनके लिए इंद्र शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि इंद्र के निमित्त यदि हम द्रव्य और देवता पूर्वक उस हवन करते हैं, द्रव्यो देवतोद्देशेन हव्य त्याग, देवता को उद्देश्य करके हव्य का प्रदान करना ही यज्ञ है। यदि इस प्रकार से यज्ञ किया जाता है तो उस यज्ञ का जो फल देने वाला है वो इंद्र है। इदम इंद्राय न ममः, ये इंद्र के लिए मैंने दिया, ये मेरा नहीं। ऐसे मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन करते हैं तो हवन का जो फल है वो यजमान को प्राप्त होता है। संसार विषयिणी कामना से यदि किया जाता है तो संसार विषयक काम की पूर्ति होती है। वैसे संसार विषयक कामनाओं की तो जो पूर्ति है वो एक एक ही होती है और इसका कोई पार नहीं है, अपार है। किंतु सब कामनाओं में श्रेष्ठ एक बार जिस कामना की पूर्ति हो जाती है फिर कोई कामना नहीं उठती है वो है ब्रह्म। फिर उसको प्राप्त होने के बाद कोई कामना नहीं रहती है। इसलिए कामना की निवृत्ति को उपनिषद में मोक्ष कहा। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मृत्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। ये जो बृहदारण्यक श्रुति में कहा कि सब कामना की पूर्ति, तो ये जो ओमकार है उसके लिए प्रार्थना की गई कि स इंद्र, ऐसा जो ओमकार सर्व कामनाओं का स्वामी, मैं मेधया स्पृणोतु, मेरे को मेधा से स्पृणोतु यानी कि संपन्न करे। ये जो है जप हुआ है, तो ये प्रणों के लिए जप बताए। और भी एक मंत्र उसमें कहा, संक्षेप से ये भी बता देते हैं। अमृतस्य देवधारणो भूयासम, ओमकार के लिए एक और प्रार्थना कि देव अमृतस्य धारण भूयासम। फिर इस पंक्ति में ओमकार के लिए देव शब्द का प्रयोग किया, संबोधन है। देव यानी कि ओमकार, अमृतस्य धारण भूयासम, मैं मेधा से संपन्न होने के बाद अमृतत्व को धारण करने वाला हो जाऊं, अमृत को प्राप्त हो जाऊं। अमृत से अभिप्राय है मोक्ष, अमृत यानी मरण राहित्य अवस्था, जिस अवस्था में मृत्यु नहीं है। मृत्यु की पहुंच केवल कामना तक है, अथ अकामयमान न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति। जो कामना से रहित है उसके पास मृत्यु नहीं पहुंच सकती है, वो तो जीते जी ही क्या हो गया, वो अमर हो गया। इसलिए देवा अमृतस्य धारण भूयासम, यानी देव से लेना है हे दीप्ति मन प्रणव, हे दीप्ति मान प्रणव, मैं अमृतत्व को धारण करने वाला हो जाओ। तो सज्जनों ये तो बताया मेधा सिद्धि के लिए, तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में केवल मेधा का अभाव ही तो बाधक नहीं है ना। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप यहां तक नहीं आ सकते, इसलिए शरीर स्वास्थ्य के लिए भी ओमकार से प्रार्थना की गई, वो संक्षेप से बता देते हैं। मैं शरीरम विचर्षणम, वैसे पाठ में आप पाएंगे शरीरम में विचर्षणम ऐसा पाएंगे, किंतु वाक्य बनाएंगे तो ऐसा होगा मैं शरीरम विचर्षणम। ओमकार के निमित्त ही प्रार्थना, ओम को पहले संबोधित करना कि वो सब में बोलना कि यह छंदसाम ऋषभ विश्वरूप इंद्र, मैं शरीरम विचर्षणम, ऊपर से लगा लीजिए कुरु, आप जो है मेरे शरीर को विचर्षणम, मैं शरीरम, या मेरा जो शरीर है वो विचर्षणम हो जाए, मैं यानी मम या मेरा जो शरीर है वो विचर्षणम। विचर्षणम का अर्थ है रोग रहित भूयात, मेरा शरीर रोग से रहित हो जाए। भूयात शब्द लगा लीजिए, मैं शरीरम विचर्षणम भूयात, मेरा जो शरीर है वो विचर्षण हो जाए। तो देखिए शरीर स्वस्थ हो इससे, किंतु इंद्रिया जो विचलित हो तब भी ग्रंथार्थ धारण नहीं किया जा सकता है, ब्रह्म ज्ञान का उदय उसके बिना नहीं होगा। इसलिए आगे कहा, कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, इसलिए कहा कि कर्णाभ्याम यानी श्रोत्र के द्वारा मैं भूरि विश्रुवम, भूरि यानी बहु श्रवण करने वाला हो जाओ, यानी श्रवण करने से मैं कभी थकू नहीं। तो देखिए केवल श्रवण से ही नहीं लेना, फिर और भी इंद्रिया इसके अनुकूल होनी चाहिए। आपकी दर्शन शक्ति प्रबल है, दर्शन में ज्यादा रुचि है तो श्रवण गौण हो जाता है, फिर दृश्य प्रदान हो जाता है। मेरे को अच्छे अच्छे पदार्थ देखने की इच्छा होती है तो चक्षुरिंद्री प्रबल हो जाती है, और ये श्रुति तो उसमें तो श्रवण ही मुख्य है। इसलिए चक्षुरादि इंद्रिया भी तद अनुकूल हो जाए। अब ये जो ओंकार है, ओंकार के निमित्त प्रार्थना है। अब यहां प्रश्न खड़ा हो जाते, ओंकार तो एक शब्द स्वरूप है भाई, उसकी प्रार्थना कैसे घट सकती है? ओंकार क्या है? अकार उकार मकार, इन तीन वर्णों का समुदाय, तीन अवयवों से युक्त जो ओंकार शब्द है वो तो शब्दात्मक है, जड़ है। शब्द को कैसा कहा गया? जड़ है। तो वो इस प्रकार की जो है प्रार्थना के लिए कैसे योग्य हो सकते हैं, और ये ओंकार इस प्रकार का फल कैसे प्रदान कर सकता है? तो कहा कि ओंकार से अभिप्राय है ओंकार का जो वाच्य परमात्मा, वो यहां पर ग्राह्य है। फल देने वाले तो वो ही है, किसी के माध्यम से फल देने वाले तो एक परमात्मा। इसलिए उसके लिए कहा, ब्रह्मण कोशोसी, आप जो है ओंकार के लिए कहा, आप ब्रह्मण कोशोसी, आप जो है ब्रह्मण यानी परमात्मन कोशोसी, आप जो है उसका कोश है, आप प्रणवात्मा कोश में परमात्मा उपलब्ध है। कोश कहते हैं कवर, परमात्मा प्रणव रूपी कवर से निबद्ध है, इसलिए ओंकार है वो परमात्मा का कोश है यानी आवरण है, उसमें परमात्मा छुपा हुआ है। इसलिए ओंकार की प्रार्थना करोगे तो अंदर छुपा हुआ परमात्मा सुन लेंगे, इसलिए ब्रह्मण कोशों से। तो फिर प्रश्न खड़ा होगा कि इस प्रकार से जब ये ओंकार की महिमा है तो लौकिक लोग इसको क्यों नहीं जानते हैं? तो कहा, मेधया पिहितः, कहा कि ये जो ओंकार है वो मेधा से पिहित है। मेधया से लेना है यहां पर लौकिक प्रज्ञा, लौकिक प्रज्ञा से ये पिहित है यानी ढका हुआ है। सामान्य लोक जो है वो अपनी प्रज्ञा से इसको इस प्रकार से, जैसी इसकी महिमा इसमें बताई है, उस महिमा से अनभिज्ञ रहते हैं। लौकिक प्रज्ञा के कारण वो आच्छादित रहते हैं, यानी सामान्य प्रज्ञा से इसका ज्ञान संभव नहीं है। और फिर अंत में कहा कि ओंकार के लिए, श्रुतम मे गोपाय, यानी मैं श्रुतम गोपाय, मैंने जो ये श्रवण किया है, मेरे द्वारा जो श्रुतम है, श्रवण पूर्वक जो अध्ययन है, ये वेदांत का जो श्रवण पूर्वक अध्ययन है, वो गोपाय यानी मैं उसको भूलू नहीं, यानी विस्मृत्यादि दोष से, विस्मृत्यादि जो निवारणेन पालय, ये अर्थ होगा, विस्मृत्यादि जो दोष है उसका निवारण करते हुए आप मेरा पालन करें। तो समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से यदि ये मंत्र का उच्चारण करता है तो इसमें ओंकार के निमित्त इस प्रकार की प्रार्थना है, और मंत्र पाठ का उच्चारण से ये बात सिद्ध हो जाती है। इसलिए शांति पाठ बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उसका अर्थ समझना चाहिए, जिससे कि हम ये अध्यात्म पथ की और अग्रसर हो सके। परमात्मा सबको सर्व प्रकार से शक्ति संपन्न करे, यही प्रार्थना। ओम।